ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय करुणा भाई जी हैं। हम एक हाथ उठाकर एक हाथ की ताली से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज बाप दादा मिलन के दिन परमात्मा स्नेह की अनुभूति कराने के लिए आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय करुणा भाई जी वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं और संगठन के वैश्विक प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप 1960 में ईश्वरीय ज्ञान में आए और तब से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आप साकार मम्मा बाबा की पालना में विशेष पले बड़े हैं। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से आने के बाद आपने अपना ईश्वरीय जीवन सेवा को समर्पित किया और तकनीक और आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए संगठन में आधुनिक संचार के अनेक माध्यम विकसित करने का माध्यम बने। आपने कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने, ईमेल, टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली को विकसित करने तथा 16 भाषाओं में अनुवाद प्रणाली के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश को विश्व भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही सच्ची गीता प्रिंटर्स की स्थापना की, ज्ञान विज्ञान पत्रिका की भी लॉन्चिंग आपने करी और वर्तमान में आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन के रूप में भी आपने पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक बाबा का संदेश पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप कई देशों में भी ईश्वरीय सेवा अर्थ गए हैं, हद के साधनों से भी बेहद सेवा का आधार बने हैं, पीएम टीवी के द्वारा घर घर संदेश पहुंचाने के कर्णधार बने हैं, प्यासी आत्माओं को मार्ग दिखाने अवेकनिंग प्रोग्राम के सूत्रधार बने हैं और मीडिया विंग की सुदृढ़ नींव रख यज्ञ के विस्तार के निमित्त बने हैं। ऐसे करुणा भाई जी के लिए दो लाइन और कहना चाहूंगी। आपके नाम में, आपके नाम में करुणा का मधुर संदेश समाया है। आपके जीवन ने निस्वार्थ प्रेम का सुंदर पाठ पढ़ाया है। परमात्मा स्नेह की गहराई को जिन्होंने अनुभव में पाया है, आज उसी परमात्मा स्नेह और निस्वार्थ स्नेह का दिव्य रहस्य सुनाने आप हमारे बीच पधारे हैं, आपसे हम आज के विषय पर सुनेंगे, परमात्मा स्नेह निस्वार्थ स्नेह।
ओम शांति। आपका आज का विषय है कि हम सभी उमंग उत्साह में हर वक्त कैसे रहे। तो मुझे कहा गया तो मुझे याद आता है जो पहला लेसन हम सबको सुनाते हैं और मैं समझता हूं वो लेसन जो है वो पहला भी है और अंतिम भी है। बाबा हर मुरली में कहते हैं आत्मा अभिमानी भव, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ पहला भी है और जब शरीर छोड़ेंगे तो स्मृति क्या आनी चाहिए, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का संतान हूं। तो ये पहली लेसन, जब तक शरीर में है तब तक हम सबको याद करना होगा। मुझे याद है हमारे बेंगलोर में टीचर हृदय पुष्पा जी थे, जो चंद्रमणि दादी जी के बड़ी बहन। तो मुझे पहला लेसन बता करके, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, और इस दुनिया में जब मैं आया तो भगवान ने हम सबको शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं ये स्मृति के साथ इस दुनिया में भेजा था। परंतु जब तक चार युग पूरा हुआ तो आत्मा तो छोड़ो, शरीर भी अपवित्र हो गया। आत्मा के बारे में तो किसी ने नहीं समझाया। जन्म लेते ही शरीर के माँ बाप अन्य संबंधी, आत्मा का तो बिल्कुल नहीं, ना किसी स्कूल में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हमको ये शिक्षा नहीं दिया गया। मेरे से कई बार पूछते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं आप, यहाँ कौन सा विद्यालय है ये, जो ऐसा, जो अलग एक शिक्षा आप देते हैं? तो मैं कई बार बताता हूँ, विद्यालय भी है, ऐसा भी विद्यालय कभी नहीं देखा होगा, छोटे भी है तो बुजुर्ग भी है, और एक ही क्लास में बैठे हैं और एक ही लेसन सब सुनते हैं। तो एक समय पर ऐसा भारत में एक था, एक ही स्कूल था, जिसका नाम है गुरुकुल शिक्षा। जो उनको पढ़ाते थे, जिनको आचार्य कहते थे, तो बाबा ने आकर के गुरुकुल शिक्षा का स्कूल खोला। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बंद हो गया था, जितने भी आचार्य थे उन लोगों को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो इसीलिए बाबा ने विद्यालय के नाम से, ये विद्यालय भारत में सिर्फ नहीं तो आज 140 देश में भी यही नाम से प्रचलित है, विद्यालय है। तो लोग कभी कभी समझते हैं विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। सरकार ने भी एक बार हम लोगों को लिखा कि आप ये क्या यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, हम जब लिखते हैं विश्व अलग विद्यालय अलग, सारे विश्व में एक ही प्रकार के विद्यालय, तो जो ब्रह्मा कुमारी का विद्यालय है ये, तो यहाँ जो शिक्षा हम सबको जो पहला क्लास में जैसे ABCD सिखाई जाती है, तो ऐसे हम सबको जो एक पाठ पढ़ाया गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जब पहला दिन ही जब हमको सिखाया गया तो अच्छा लगा। अरे हम पढ़ाई तो इतना पढ़ चुके हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है सब, पर ये पाठ तो कहीं नहीं सिखा है। तो जो भी होगा ये पाठ सुनते ही एक बार मन में आता है कि हम अभी तक अपने आप को शरीर समझते थे, तो हम आत्मा है। ये पाठ जो है हर मुरली में बाबा हमको याद दिलाते हैं कि हम आत्मा है। तो हम परमात्मा को नहीं भूलते हैं और इस शरीर का नाम भी नहीं भूलते हैं, शरीर के माँ बाप को भी हम नहीं भूलते हैं, परंतु अपने आप को आत्मा या जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको भी हम आत्मा नहीं समझते थे। तो एक दो का परिचय कार्ड भी देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, हमारे मन में जैसे हो जाता है। कोई बच्चे से भी पूछते हैं ना, तो आप कौन से क्लास में पढ़ते, फटाक से बोल देता है, मैं दो नहीं तीन में हूं अभी, ऐसा बोल देते हैं। तो एक बार एक क्लास में आते हैं वो पक्का करते हैं, पास्ट को भूल जाते हैं। ऐसे हम बच्चों को भी जो ये पहला पार्ट है तो वो ही हमको लास्ट में भी मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मुझे याद है कभी कभी ब्रह्मा बाबा साकार में मुरली के बाद हम बच्चों को याद दिलाते थे, बच्चे दो मिनट बैठो, बैठ करके ऐसा समझो जैसे मैं इस शरीर को छोड़ दिया है, शरीर से मैं अलग हूं। तो ये अभ्यास करो और हमको कराते थे। तो हमारे भाई बहने कभी कभी एक बाबा का पहाड़ करके, हम लोग नक्की लेक के पास एक पहाड़ी है, आजकल उसको हम लोगों को जाने में कभी कभी मना करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं तो ये ब्रह्मा कुमारियां इसको भी हमारा कह दे, नहीं कह दे कभी, तो इसीलिए कभी कभी जाने नहीं देते हैं। परंतु साकार बाबा हम बच्चों को उस पहाड़ी पे जरूर भेजते थे और हम लोगों को वहां ये अभ्यास कराते थे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बस हम बाबा के पास जा रहे हैं। तो कई बार कई भाई बहनें वहां अभ्यास करते करते, जैसे संदेशी वतन में जाते हैं, तो ऐसे कईयों का अनुभव हो जाता था। तो वो नीचे आते ही नहीं थे, तो उन्हों को कभी कभी ऐसे उठा करके हम नीचे लाते थे तो फिर धीरे धीरे वो शरीर में आते थे। तो ऐसा अनुभव हम लोगों ने किया था। मुझे भी याद है जिस दिन पहला दिन मुझे शिक्षा दिया गया कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, तो इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा मैं समझ गया तो मुझे दूसरा लेसन बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आज कल जब आप आएंगे 24 घंटे के बाद तो तब आपको दूसरी लेसन देंगे, तब तक आपको एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा देखो बच्चे को भी ये मम्मी है, ये पापा है, वो भी सिखाना पड़ता है, पहली बार में वो बच्चा नहीं सीखता है, बच्चे को भी सिखाना पड़ता है, 10 बार पूछो तो बोल के फिर प्रैक्टिस हो जाता है। ऐसे हम बच्चों को भी जब मैं आत्मा हूं ये पाठ पढ़ाया गया तो 24 घंटे आपको ये याद करना होगा, जितनी बार याद कर सको, सारा दिन सारे रात आपको यही याद करना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जैसे जैसे करता गया तो मुझे खुशी बढ़ती गई। जैसे बाबा भी उस समय पर मुझे मदद कर रहा था, क्योंकि आत्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो ये जो आत्मा के गुण मुझे बताया गया तो मेरा ओरिजिनल गुण है ये। वैसे लोग कहते हैं कि शांति बाहर नहीं है, अंदर है, शांति ढूंढना है अंदर ढूंढो कहते थे, अंदर कहां ढूंढे। आत्मा शिव बाबा का बच्चा है तो शांति का सागर वो है, तो शांति आत्मा को बाबा से मिलता है। तो जैसे मैंने देखा हमारे दादियां जैसे ही बाबा की याद में बैठते हैं तो इनका फेस चेंज हो जाता था, एकदम जैसे साइलेंस में चले जाते थे। तो क्या हम बच्चे भी कभी कभी अपने आप को, जो अपना जो अंतिम स्वरूप है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, तो उसका अनुभव करने का जो विधि है वो जितना समय हम करते हैं तो उतना वो अच्छा होता है। तो मैंने पूरा दिन पूरा रात जैसे मुझे चलता रहा, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं, तो ये करते 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 जैसे मैं सुबह 5:30 बजे आश्रम जाता था तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। तो जैसे ही मैं गया तो मैं दीदी को बताने के लिए थोड़ा सा उतावली था कि भाई, तो मैं बोलने जा रहा था दीदी को कि मैंने दिन रात प्रैक्टिस किया है, और तो जैसे ही बोलने शुरू किया बोला नहीं मुझे मालूम है, आपका फेस से ही मुझे मालूम हो गया, पहला दिन ही कहते थे कि आप सचमुच दिन और रात अभ्यास किया है, आपका कल जो फेस था और अभी का जो फेस है बहुत अलग है। आप खुश है तो ये अभ्यास, ये आद का भी है तो हर मुरली में भी बाबा ये याद दिलाते हैं, आत्म अभिमानी भव, देह अभिमान नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्म अभिमानी भव। तो आजकल इस बात की थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है और बहुत जरूरी भी है, सोने से पहले भी उठते भी, दिन में जितनी बार हो सके अपने आप को शरीर से अलग, मैं एक आत्मा हूं। तो बाबा कभी कभी कहते थे तो शवासन कहते हैं, ये आसन है, एक स्पेशल आसन है ये, तो एकदम शरीर से अलग हो करके अपने आप को जो आत्मा समझना, ये भी एक अभ्यास करना है। तो इस कारण हम आत्माओं को खुशी रहता है, क्योंकि लोग कहते हैं तो ये मर गया, पर हम कहते हैं हम नहीं मरे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में मुझे पहला पार्टी ये सिखाया कि भाई मैं तो मरने वाला नहीं है। तो आज सारी दुनिया में भय हो तो एक ही बात का है कि हम तो मर जाएंगे, हम तो शरीर छोड़ देंगे, हमारा क्या होगा ऐसा। पर हम बाबा के बच्चों को ये पक्का हो गया कि हम तो कभी मरने वाले नहीं हैं। वैसे भी हमारे शास्त्रों में तीन बात के लिए कहते हैं मरने वाले नहीं है ये। एक है मैं आत्मा था है रहूंगा, हे अर्जुन, हे राजाए प्रजाए, जो भी शरीर छोड़े हैं तो ये मर गए ऐसा नहीं है, ये थे है और रहेंगे। तो आत्माओं के बारे में ये कहा गया है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, डूबता नहीं, जलता नहीं, वो है एक। तो जब आत्मा ही नहीं मरता है तो परमात्मा भी जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है नहीं, परमात्मा भी था है और रहेगा, दो हो गया। अब तीसरा कौन सा है? ये सूरज, ये चांद, ये प्रकृति जिसको हम कहते हैं कि पांच तत्व की जो दुनिया है, ये भी था है और रहेगा। चाहे इसमें बॉम्ब डालो, कुछ भी करो, क्या भी करो, ये प्रकृति को आप जला भी दो तो राख तो हो ही, तो वो भी एक परिवर्तनशील है। बाकी प्रकृति गुम नहीं होता है, प्रकृति था है और रहेगा। सतयुग में कितना सुंदर प्रकृति था, सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? जो प्रकृति वहां थी वो सबको सुख देने वाली थी। तो फिर से वापस प्रकृति ऐसे ही होता है, तो जैसे बारिश नहीं आई तो सब सूखा सूखा हो जाता है हमारा। अब में हम देखते हैं पहाड़ी ये वो सब सूखा हुआ है, जैसे ही एक बारिश पड़ा अपने आप सब ग्रीनरी हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना, तो ये सृष्टि विनाश हो जाएगा, वो तो बोलते हैं, परंतु तो सतयुग कैसे आएगा ये कोई नहीं बोलता है। भाई सतयुग और कलयुग जो कहते हैं पहले प्रकृति को कहते हैं, तो आज जो प्रकृति हम देख रहे हैं ये प्रकृति का लास्ट स्टेज है। सतो रजो तमो कहते हैं हम लोग, तमो प्रधान बन गया है ये पांच तत्व, पर इसी तत्व को समय पर ये हो जाता है। वैसे भी तो कई भाई बहने हमको बताते हैं कि भाई 90 साल हो गया तो अब 10 साल और बाकी है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बाबा 5000 बोला तो हम सब ने मान लिया। जो मानते हैं ये सृष्टि का चक्कर 5000 साल है, हाथ उठाए, देखो सभी उठा रहे हैं, तो एक साल बढ़ावे बढ़ा सकते हैं? नहीं, 5000 साल है। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को जब ये कहा, बच्चे एक जन्म का है ये संगम युग है, ये 100 साल का है, इन्होंने बताया, तो हमने मान लिया। तो इसीलिए हमको कभी कभी बोलते हैं भाई 90 साल तो हो गया, अभी 10 साल के बाद विनाश हो जाएगा। परंतु विनाश किस बात का होता है? सृष्टि का। तो सृष्टि का परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता है। आपको मालूम है शरीर भी हम लोग इसको जलाते हैं तो राख बन जाता है, फिर वो राख ले जाके गंगा में बहाते हैं, तो राख तो है ही। तो ऐसे ये प्रकृति भी रूप बदल देते हैं कि देखो ये इतना बड़ा इतना अच्छा डायमंड हॉल बना है, तो है तो वही पांच तत्व है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो परिवर्तन होता है, बदलता है रूप। बस हर चीज इस पांच तत्व का ही अंग है, ये कहीं और ऊपर से नहीं आया है, सब यहां से ही है। तो इसीलिए इस पांच तत्व को भी हम कहते हैं बनने में विनाश होता है, फिर वापस आने में, जैसे हम आत्मा एक शरीर छोड़ देते हैं पर जब दूसरा शरीर लेके ही आते हैं, ऐसे ही आत्मा नहीं भटकती है, भटकने वाला आत्मा नहीं है। तो जैसे हम सब आत्माएं हैं, ये शरीर छोड़ेंगे इसके बाद फिर हम लोग नया शरीर लेते हैं। तो हम लोग जो भी यहां बैठे हैं तो हम सबसे बाबा पूछे तो बच्चे यहीं शरीर छोड़ के फिर से जन्म लेंगे या सब चाहेंगे सतयुग में जन्म लेंगे? तो जो कहे कि भाई बाबा हम तो सतयुग में जन्म लेंगे वो हाथ उठाए, तो देखो सब चाहते हैं हम सतयुग में। जन्म तो लेना है परंतु सतयुग में ही जन्म लेना, तो वही हम सब जाते हैं, क्योंकि हम जो भी अभी बैठे हैं यहाँ हम सब यही साधना करते हैं। तो हम पहले पहले कौन थे? हम सतयुगी देवता थे। तो मुझे आप सभी दिखते हैं कि भाई ये सतयुग की देवताएं, पूछते वो कहाँ है, 33 करोड़ देवताएं वो कहाँ है? तो हम बच्चे ही जानते हैं वो यहाँ ही है, जो अपने आप को देवता समझते हैं। कौन चाहेगा इस कलयुग में फिर से जन्म ले? नहीं, बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं बच्चे थोड़ा सा याद ज्यादा करो तो ताकि हम सतयुग में जन्म लें। तो पर आप कहेंगे 10 साल है, तो क्या 10 साल के अंदर सतयुग आ जाएगा? तो संगम उसको कहते हैं जो कलयुग और सतयुग का बीच का जो 100 साल है उसको संगम कहते हैं। तो क्या संगम सारे 100 साल कलयुग का ही है? तो सतयुग का थोड़ा भी नहीं चाहिए? तो जो कहते हैं ना सतयुग, बस ये 10 साल के बाद सतयुग आएगा या विनाश होगा, ऐसा नहीं है। आपको स्पष्ट शब्दों में बाबा जो कहते थे विनाश आया कि आया, बस अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो शेर आया कि आया, तो क्या जो समझते हैं शेर आ गया है वो हाथ उठाए। देखो सब लोग कहते हैं शेर आ गया है, तो आज तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, परंतु हर टीवी, हर न्यूज़पेपर, हर रेडियो में आपको ये शब्द सुनने में आ रहा है। ब्रह्मा कुमारिया नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारिया बोलते हैं सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो इसीलिए दुनिया अभी बोल रहे हैं तो विनाश आया कि आया। तो एक और भी बात मैं आपको, क्योंकि मैं मीडिया से हूं, मुझे हर मिनट हर सेकंड विश्व का समाचार मिलता रहता है। कहीं भी विश्व में कुछ भी होता है उसी सेकंड में आ जाता है। आजकल सोशल मीडिया कहते हैं बहुत फास्ट है, जो न्यूज है वो ऐसा स्प्रेड हो जाता है, ऐसा मालूम हो जाता है, सेकंड्स में स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो 2026वीं साल जो है, ये तीसरा युद्ध का आरंभ हो चुका है, ये सारा विश्व मानना शुरू हो गए हैं। युद्ध तो शुरू हो गई है, बंद ही नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। हम समझते थे अरे कहीं तो हो रहा है, हमको क्या है। तो कल मैंने न्यूज देखा, तो जब आप सभी अपने घर पहुंचेंगे तब तक वहां का गैस सिलेंडर के ऊपर 50-60 रुपया ज्यादा हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि युद्ध हो रहा है, चल रहा है, तो जिस कारण तेल का भाव बढ़ गया है, गैस का भाव बढ़ गया है, तो इसीलिए हर चीज का भाव बढ़ेगा। तो हमने सभी हमारे अपने भाई बहनों को ये कहते आए हैं कि ऐसा भी कुछ समय आएगा तो हर चीज की भाव बढ़ेगा, हो सकता है कोई कोई चीज न भी मिले। तो इसीलिए जो एक साल तक का जो आप रख सकते हो वो आप लेके रखेंगे, शायद हो सकता है कि उसका प्राइस डबल भी हो जाए, आश्चर्य नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है, तो जितना आप 3 मास 6 मास साल का लेके रखेंगे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे समय भी आता है जैसे ईरान एक देश है जो युद्ध में अभी भाग ले रहा है, उसके पास न इंटरनेट है, कभी कभी लाइट भी नहीं मिल रहा है। तो आप सोचो, तो किसी भी कारण से इंटरनेट नहीं हो, बिजली नहीं हो, तो क्या बैंक से पैसा निकाल सकेंगे, एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे? तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पास बचा के भी रखना होता है। तो ये सब चीजें आपको 10 साल के बाद नहीं, तो आज ये करने का समय आ चुका है। तो कभी भी किस वक्त भी बॉम्ब डाले, तो बाबा ने कहा तो सेकंड में सब खत्म हो जाता है। एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। वो किसी ने ट्रंप जैसा दबा दिया, तो आप समझ सकते हो कि सेकंड में सारा विश्व ऐसा हो जाता है। तो ऐसे समय पे क्या हो सकता है? तो इसीलिए वो समय आ गया है, जैसे बोला ना, शेर आ गया है परंतु हमारे घर तक नहीं आया है, इतना ही फर्क है। पर असर होना शुरू हो गया है, युद्ध का अनुभव हर एक को हो गया। आपको बताऊं, आप तो बहुत लक्की बाबा के बच्चे हो, बाबा के घर पहुंच गए, बाबा से मिल रहे हैं आज। परंतु हमारे विदेश के 1000 भाई बहने बहुत साल के बाद खुशी खुशी से आए थे बाबा से मिलने, और बाबा से मिले भी, वापस नहीं जा पा रहे हैं। प्लेन जो ले जाता है सब कैंसिल हो गया है। अभी भी जो बाबा से मिलने के बाद भी ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, कुछ यहां भी बैठे हैं, पांडव भवन में भी बैठे हैं, तो प्लेन नहीं मिल रहा है जाने का, तो बाबा का घर में बैठे हैं। तो आप बताओ, तो हम सभी को उन लोगों को भेजने के लिए रात दिन हम इंतजार करते हैं, कौन सा देश का प्लेन अभी हो रहा है, कैसे जावे ये लोग, तो पैसा ज्यादा भी देना पड़ रहा है, तो उनको हम भेज रहे हैं। तो यहां से पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर दूसरे देशों में वो लोग जाएंगे। तो इस प्रकार का ये सारा अनुभव हम सब कर रहे हैं। तो इसीलिए जो बाबा हम बच्चों को सूचना दे रहे हैं कि भाई विनाश होगा नहीं, विनाश का शुरुआत हो चुका है, और वो धीरे धीरे सभी देशों तक। तो हमारे कई भाई बहने दुबई में जाके आ जाते थे, तो दुबई देखा, सारी दुनिया देखा, ऐसा कईयों को अनुभव होता था। तो पर आज दुबई कोई नहीं जा पा रहे हैं, दुबई में रह कर के दूसरा प्लेन लेके जाते थे अन्य देशों के लिए, पर वो भी अभी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो हम लोग जितना निश्चिंत है विनाश होगा, तो समझो प्रकृति भी आज, मैं अभी अभी सुबह देख रहा था, इतना तूफान जिसको कहते हैं, तो ऐसे तूफान चल रहा था, तो वहां सब कुछ नुकसान हो रहा था, अमेरिका की बात थी है। तो इसी प्रकार प्रकृति भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो सबके दिल में जो दर्द हो गया था, दुख हुआ था, जब अहमदाबाद में एक प्लेन ऐसा एक सेकंड में गिरा और जल गया पूरा, एक बचाता है उसमें बस, पूरा प्लेन में जितने 200-300 लोग थे सब जल गए थे। तो उस समय पर भी हम सबको थोड़ा सा होता था मन में, तो अब तो इस प्रकार का हमको रोज, अभी जो युद्ध चल रहा है हजारे लोग शरीर छोड़ चुके हैं, तो इसलिए हम बच्चों के लिए अभी मन छोटा करने का नहीं है, परंतु उनके लिए सकाश तो हम दे रहे हैं, सकाश देना ही है, साथ साथ खुशी में भी रहना है। बोल नहीं सकते हैं भाई हमारा सतयुग आ रहा है, ऐसा हम खुशी सबके सामने ऐसा नहीं बोल सकते हैं, परंतु हमारे चेहरे पे दुख नहीं होगा। जो बाबा के बच्चे यहां से अभी जा रहे हैं उनका चेहरा जो है सबको खुशी देगी, दुख नहीं देगा। ये एक है। दूसरा, मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, सर्व गुणों का संपन्न आत्मा हूं, ये तो मैं आत्मा हूं ये है, परंतु ये जो शक्तियां और गुण जो है वो आवे कैसे? इस कलयुग की कोई भी जितनी भी हम लोग साथ हो उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाता है, परंतु हम बच्चों को बाबा को जितनी हम याद करते हैं ये दुनिया में कोई याद नहीं करते हैं। दुनिया में एक ही याद करते हैं, इसको मारो इसको मारो, जिसके पास ज्यादा बॉम्ब है वो दूसरों के ऊपर डालो। इसके अलावा भारत अपने को बचाने के लिए सोचता है, मारने के लिए नहीं। एक ही देश है सारे विश्व में भारत, जो दूसरों के ऊपर हमला नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना देश को बचाने के लिए तो अपने देश में भी कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करे तो उनको घर में घुस के मारने की बात कह रहे हैं हमारे मोदी जी। तो हम बच्चे भी माया को यही चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे साथ भगवान है। जैसे वो बॉम्ब जिसके पास होता है ना, पाकिस्तान भी कहते हैं हमारे पास बॉम्ब है, तो हम बच्चे भी सारे दुनिया को देखने समय पर हमारे में चेहरे में खुशी, शांति, आनंद, प्रेम क्यों है? क्योंकि हम बच्चों के साथ भगवान है। दूसरे जो भी इस विश्व में है उनका भगवान, जो घर के अंदर भगवान के लिए एक कोने में एक मंदिर बनाते हैं उसके अंदर है, या जो मंदिर बनाते हैं उसके अंदर है, और उसका भगवान भी ऐसा है जो हाथ ऊपर है तो हाथ ऊपर ही है, नीचे आएंगे तो दूसरे दिन वहां नहीं जाएंगे। पर हमारा बाबा हमारे साथ है। जो समझते हैं बाबा हमारे साथ है, देखो सब हाथ उठा रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं पर बाबा हमको नहीं भूलता है। तो मुझे याद है कि बाबा कहते थे बच्चे अमृत वेला 3:30-4 बजे, कभी कभी कटिया हिलाते हैं बाबा करके, ये जो समझते हैं 4 बजे हमको बाबा उठाते हैं वो हाथ उठाए, देखो तो हमारे साथ बाबा है, बाबा उठाता है और बाबा को याद करते हैं अमृत वेला। तो बाबा ने कहा था जो अमृत वेला नहीं उठते हैं तो बच्चे मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि आप तो बहुत थोड़े बच्चे हैं, तो सारे दुनिया में जो भगत है वो 5 बजे उठते हैं। आपने सुना होगा मुसलमान भी जो आवाज करते हैं मस्जिद में वो भी 5 बजे करते हैं, सब लोग 5 बजे उठते हैं भगत। तो इसीलिए हमको 5 बजे उठने का नहीं है, बाबा बिजी है भक्तों के साथ, हमारा बाबा हमारे साथ जो है वो 4 बजे से। परंतु एक और सच भी बता दूं, जब से मैंने सुना था मम्मा कभी 2-2.5 बजे के बाद नींद नहीं किया है, ये मैंने मम्मा के मुख से भी सुना था, तो उस समय पर जो भी बहनें थे दादियां थे वो लोग भी कहते थे। तो मुझे भी कई बार 2 बजे के बाद भी नींद नहीं आता है, तो मुझे यही याद आता है जितना मैं बाबा को याद करूं। तो कई भाई बहने पूछते हैं तो ठीक है 4 से 5 तो हम याद किया तो फिर सो सकते हैं, मैं कहता हूं भले सो जाना कोई बात नहीं, परंतु 4 से 5 तो समझो ये आपका हर रोज बाबा आपके साथ है, आप बाबा के साथ है, यही एक प्राइवेट टाइम है हमारे बाबा के साथ मुलाकात करने का। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं आप लोगों को कि आज का सब्जेक्ट ये है, जब आत्मा समझते हैं तो खुशी एक और होती है, और परमात्मा हमारे साथ है, भक्तों के साथ भी नहीं है, बोलना नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। अमृत वेला जो कहते हैं वो हम बच्चों के लिए है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ फादर्स आए थे क्रिश्चियंस के, तो उनके साथ बात करते मैंने कहा हम लोग सुबह उठते हैं भगवान को याद करते हैं, तो ये तो उन्होंने कहा हाँ हम भी सुबह उठते हैं और भगवान को याद करते हैं। तो मैंने कहा आपके जो फॉलोअर्स है तो वो भी उठते हैं? बोला नहीं नहीं वो नहीं उठते हम, पर मैंने कहा हमारे पास हमारे टीचर्स भी उठते हैं और जो बाबा के बच्चे करोड़ों है हम लोग अभी इस समय पर हम भी सब उठते हैं। कोई भी संत ये नहीं कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए कि आप अमृत वेला उठो और वो कहे मेरे सब फॉलोअर्स उठते हैं, ऐसा कोई मैंने नहीं देखा ना मैं सुना अभी तक। तो इसीलिए भगवान हमारे साथ है, ये जो खुशी है ये दुनिया में केवल हम बच्चों के लिए है। तीसरी बात, हम लोगों को बाबा ने सेवा करने का एक ड्यूटी दिया है सभी बच्चों के लिए, ये नहीं कि हमारे टीचर्स ही है, नहीं, टीचर्स के साथ साथ हम सब बच्चों के लिए बाबा ने एक काम दिया है। कौन सा? सेवा। जो ये जो सेवा जो है, हम शरीर नहीं है आत्मा और शिव बाबा के बच्चे, ये ज्ञान देने की, थोड़ा सा आप किसी को देखे बोल के देखो एकदम आत्मा खुशी में नाचना शुरू कर देता है, सेवा ये है। तो इसीलिए तो तीसरा भी मुझे याद है कि नाश्ता करने के लिए पहले किसी को एक पैम्पलेट भी दे दे तो खुशी होती थी कि भाई आज मैं नाश्ता करूं तो अच्छा लगेगा मुझे। तो सेवा माना किसी भी आत्मा को किसी भी रूप में आपने मुस्कुराया, प्यार दिया, आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि अब जो आ रहे हैं वो भगत आत्माएं हैं, जो आप जैसे वारिस बच्चे नहीं है वो, ये तो आप तो सब वारिस बच्चे हो बाबा के, परंतु अभी आप जाने के बाद जो आपके सामने आने वाले जो है वो वारिस बच्चे नहीं है, वो बच्चे जो है भगत बच्चे हैं। वो आपका पांव यूं पकड़ेगा और कहेंगे सिर पे हाथ रखिए, तो चुपचाप, आप ज्यादा बोलने से भी फायदा नहीं है, तो वो खुश हो जाते हैं, उनको उसी में खुशी रहती है। तो इसीलिए बोलने की जो सेवा है अभी थोड़ा सा कम हो गया है। अब दृष्टि देने का, आप टीवी में चला दिया कि मैं आत्मा हूं देख लो, उसमें इतना अच्छा दिखाता है सारा चित्र के रूप में, सब जैसा ऐसा फील करेगा वो, तो मैं आत्मा क्या चीज है और आत्मा का सब गुण वगैरह सब उसमें दिखता है। तो आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा, लास्ट फिल्म अभी जो बनाए थे, भाग्य विधाता, हाथ उठाए जिन्होंने भी देखा है देख लो। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद भी कराची में थे, हम खुद बाबा के साथ थे, तो प्रैक्टिकली बाबा कैसे बोलते थे, मम्मा कैसे बोलती थी, हर चीज जैसे हमारे बाबा हमारा मम्मा, वो खुशी आती है। तो इसीलिए अभी हमको ज्यादा बोलना नहीं है, जितना हम कम बोल सकते हैं उतना बोलना है, और दृष्टि देना, आशीर्वाद देना, सर्व जने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो, सब अच्छा हो, ये संकल्प हम करना, तो इसी से ही हमारा भी खुशी बढ़ेगी, दूसरों को भी हम खुशी देंगे, क्योंकि सबको कुछ न कुछ दुख है, हर प्रकार हर दिन खुशी कम होती जाती है दुनिया में, परंतु हम बच्चों की खुशी बढ़ता है, तो हमको देने का अभी हमारे पास खुशी आया है, तो खुशी सबको देने का प्रतिज्ञा करके, आपके सामने कोई आत्मा आवे तो ओम शांति ओम शांति, वो तो इनको मालूम है ये ओम शांति वाले हैं, परंतु हम इनको मुस्कुराते हुए अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपको देखते ही खुशी हो जाएगी, और आपका पूजा भी फिर द्वापर से वही लोग करेंगे। तो इसीलिए यहां से जाते हुए जो अपने पांच अवस्था जो है, ब्राह्मण फरिश्ता आत्मा परमधाम में, फिर देवता स्वरूप, फिर वापस ब्राह्मण बन रहे हैं, तो हमारे पांचों स्वरूप का जो रिजल्ट है इस समय पर, सारे विश्व को सुख देने वाले केवल हम बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, इसीलिए यहां से प्रतिज्ञा करके जाना है, तो हमको सदा खुशी सबको देना है। ओम शांति। अब बाबा की याद में दो मिनट बैठते हैं।
तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
शांति। आदरणीय भाई साहब ने इतने सुंदर तरीके से वर्तमान जो चल रहा है और उसमें हमारी स्थिति क्या रहनी चाहिए, क्या सेवा होगी, उसके बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।